नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही हैं। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरे वचन मैं दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं, संगति में तेरे पवित्र आत्मा मैं बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्रता प्रकाश है, अपवित्रता अंधकार। प्रकाश को केवल प्रकाश का पता है, अंधकार का नहीं। इसलिए जब भीतर प्रकाश भरता है तो बाहर केवल प्रकाश ही दिखता है, फिर बाहर अंधकार दिखना बंद, क्योंकि प्रकाश को अंधकार की कोई खबर नहीं, प्रकाश को पता ही नहीं कि अंधकार क्या और कैसे होता है। जहां भीतर प्रकाश है वहां बाहर प्रकाश का ही अनुभव होता है। सुबह का समय है, रामानुजाचार्य मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, भक्ति भाव में विभोर है, परमात्मा याद में मगन है, मुख पर मंत्र है, श्लोक है, और अचानक एक चंडाल स्त्री बीच में आ जाती है और खड़ी हो जाती है। हृदय में शुद्धि, पवित्र भाव, पवित्र तरंगे थे, मुख पर मंत्र थे, श्लोक थे, सुबह का समय था, मंदिर की परिक्रमा हो रही थी, और अचानक एक चंडाल स्त्री बीच में आ गई और रामानुजाचार्य उससे कहते हैं, हट जा हे चंडालिन मेरे मार्ग से। हृदय में प्रेम था, पवित्रता थी, विष आ गया, मुख पर मंत्र थे, पवित्र वचन आ गए। उस स्त्री ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे क्षमा कीजिए, पर कृपया इतना बताए मैं अपनी पवित्रता अपवित्रता किस ओर ले जाऊं, मैं अपनी अपवित्रता किस ओर ले जाऊं, वो जगह बताओ कि जहां परमात्मा की पवित्रता नहीं है। जैसे ही ये शब्द रामानुजाचार्य सुनते हैं, सामने सामने अचानक अचानक कुछ तो हो जाता है। ऐसा वो कौन सा स्थान है जहां प्रभु की पवित्रता नहीं है? हे प्रभु, मैं अपनी अपवित्रता कहां ले जाऊं, किस ओर ले जाऊं? जैसे ही ये वचन रामानुजाचार्य सुनते हैं, हृदय में एक बिजली सी कौंध जाती है, तुरंत एक नया अनुभव, एक नई प्रतीति, और वो कहते हैं, मुझे क्षमा कर देना हे माँ, अब तक भी अपवित्रता दिखाई देती है, अर्थात भीतर अपवित्रता के अंश है। प्रकाश को केवल प्रकाश पता है, बस भीतर प्रकाश है तो बाहर भी प्रकाश ही दिखाई देगा, और यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो अंश है। भक्ति में कहा जाता है, पवित्रता या योग की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। कैसे कैसे? कर्म भाव है, इंफॉर्मेशन है, प्रिंटेड। पवित्रता प्रकाश है, और प्रकाश अंधकार को खत्म करता है, ज्ञान अज्ञान को खत्म करता है, और विकर्मों का बीज अज्ञान है। इसलिए पवित्रता या ज्ञान या योग परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली विकर्मों को भस्म करते हैं, क्योंकि विकर्मों की आधारशिला अज्ञान है। इसलिए ज्ञान को अंदर डालते जाना निरंतर सतत। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, पवित्रता पवित्रता पवित्रता, योग योग योग, वो भीतर की ज्ञान की वृत्तियों को भस्म करेंगे। और जब अज्ञान भस्म होता है तो विकर्म हिलने लगते हैं और टूट कर गिरते हैं। विकर्म अर्थात इन्फॉर्मेशन, स्टोर्ड स्टैक्ड अप इन्फॉर्मेशन। विकर्मों की भी इमारत है, बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग अज्ञान पर खड़ी है। हम विकर्मों के साथ कुछ नहीं कर रहे, अज्ञान को भस्म कर रहे हैं, तो विकर्म अपने आप गिर पड़ेंगे। मार्ग परोक्ष है, इनडायरेक्ट। सिक्सटी सिक्स्थ डे भट्टी का, अव्यक्त मास का 17वां दिन, आज का समान। मैं पवित्रता का समर्थ सम्राट हूं। चिंतन, पवित्रता का संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। कैसे? पवित्रता की धारणा नेचुरल हो जाए, उसकी विधि क्या है? योग अभ्यास। मैं आत्मा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता को संपूर्ण रूप से धारण करने वाली समर्थ सम्राट हूं। अनुभव करे बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही, बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही क्या क्या? बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही क्या हो रहा है? अपवित्रता के जर्म्स खत्म। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बाबा से मुझ आत्मा पर पवित्रता की किरणें पड़ते ही क्या हो रहा है? 100 बातें लिखनी है आज सारे दिन भर में। कितनी? 100। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही अपने जीवन की सारी घटनाओं को सामने लाओ, और फिर ये होमवर्क करना है आज। बाबा से पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही क्या क्या हो जाएगा? लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव करना महत्वपूर्ण है। पहले अनुभव करो, कई बार दिन भर बीच बीच में, और जब बहुत सारी पॉइंट्स जमा हो जाएगी तब फिर लिखने का काम आरंभ। और थोड़ा सा लिखो और फिर छोड़ दो, और फिर अनुभव करना चालू, फिर थोड़ा सा लिखो फिर छोड़ दो, फिर अनुभव करो फिर थोड़ा लिखो फिर छोड़ दो। लक्ष्य है 100 बातें। अनुभव करे बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही अपवित्रता के अंश वंश समाप्त हो रहे हैं। मास्टर पवित्रता का सूर्य बन, चारों ओर पवित्रता के प्रकंपन फैलाने की सेवा करे। पवित्र बनने की युक्ति है पवित्र बनाना। मन मास्टर पवित्रता का सूर्य बन चारों ओर पवित्रता के प्रकंपन फैलाने की सेवा करे। आज का समान अभ्यास है, मैं पवित्रता का समर्थ सम्राट हूं। प्रश्न पूछा है, पवित्रता को नेचुरल कैसे बनाए, पवित्रता की धारणा नेचुरल हो जाए उसकी विधि क्या है। तो पवित्रता के विषय में ऐसी चार बातें हम देखेंगे और ब्रह्मचर्य के विषय में चार बातें। पवित्रता नेचुरल हो जाए क्या किया जाए। यदि पवित्रता एक हैबिट है, आदत है, तो वो एक दिन की नहीं, तीन दिन की नहीं, सात दिन की नहीं, 21 दिन की नहीं, 60 दिन की नहीं, 90 दिन की नहीं, एक साल की नहीं, वो क्या बन जाए? जीवन भर की आदत, अर्थात वो जीवन शैली बन जाए। क्या बन जाए? जीवन शैली, लाइफस्टाइल। अगर प्यूरिटी को लाइफस्टाइल बनाना है तो चार प्रकार की जीवन शैली अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पवित्रता पुरुषार्थ ना रह जाए, क्या हो जाए? परिणाम। पवित्रता मेहनत ना रह जाए, क्या बन जाए? मोहब्बत। पवित्रता श्रम ना बने, पवित्रता मनोरंजन बन जाए। पवित्रता एक हॉबी ना रह जाए केवल, जीवन शैली बन जाए, लाइफस्टाइल। और इस लाइफस्टाइल को अंगीकार करने के लिए चार प्रकार की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहली है बाबा मैं जीवन शैली, बाबेरियन लाइफस्टाइल, शिवेरियन लाइफस्टाइल, गॉडेरियन लाइफस्टाइल। पहली जीवन शैली कौन सी है? BLS। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन से उतरते उतरते गिर पड़ता है, इर्द गिर्द युवक है, उसे संभालते हैं, खड़ा करते हैं। ट्रेन अभी भी खड़ी है, वो युवक, वो बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं को संभालता है और अपने जेब, अपनी पॉकेट देखने लगता है और चिल्लाता है, मेरी पर्स कहाँ है, मेरी पर्स कहाँ है। दो तीन युवक वहां हैं, ट्रेन गुजर जाती है, पर्स नीचे गिरी है, कोई युवक उस पर्स को उठाता है और बुजुर्ग व्यक्ति को देता है। बुजुर्ग व्यक्ति इतना बेचैन हो गया है, मेरी पर्स कहाँ है, मेरी पर्स कहाँ है, और जैसे पर्स मिलती है तुरंत पर्स खोलता है, पर्स को देखता है और उसे बहुत शांति मिलती है। एक युवक दूर से देख रहा है, वो कहता है आपकी पर्स में तो जरा भी पैसे नहीं है, फिर इतनी बेचैनी क्यों थी, पर्स तो खाली है, पर्स में कुछ भी नहीं है, फिर इतनी बेचैनी क्यों। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जब मैं 7वीं कक्षा में था और प्रथम आया था, मेरे पिताजी ने मुझे ये पर्स दी थी, ये वॉलेट दिया था और उसमें भगवान की तस्वीर थी, और उस उम्र में मुझे अपने माता पिता से अधिक प्रिय कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने भगवान की तस्वीर निकाल दी और अपने मम्मी डैडी की तस्वीर वहां लगा दी। मैं स्कूल में था और स्कूल में पढ़ते पढ़ते मुझे एक मित्र मिला और उस मित्र से इतनी मैत्री जो घनिष्ठ हो गई कि उसी के साथ उठना बैठना खाना पीना। और कुछ समय के बाद माता पिता ने शरीर छोड़ दिया तो मैंने अपने माँ बाप की फोटो निकाल कर उस मित्र की फोटो लगा दी। और कुछ समय के बाद उस मित्र के पिता की ट्रांसफर हो गई, वो मित्र चला गया, बाद में उसने कोई संपर्क नहीं किया। मैं कॉलेज में आया और कॉलेज में मुझे किसी से प्यार हो गया और फिर मैंने उस लड़की की तस्वीर उस वॉलेट में लगाई, पर जिससे मैंने प्यार किया वो किसी और के साथ भाग गई। फिर मेरी अपनी शादी हो गई, फिर मैंने अपनी पत्नी की तस्वीर वहां लगाई और कुछ समय के बाद हमें एक बेटी हुई और बेटी बहुत प्यारी थी तो उस बेटी की तस्वीर लगाई। फिर बेटा भी हुआ और कुछ समय के बाद फिर पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, बेटी की शादी हो गई, बेटी चली गई, फिर बचा एक बेटा और वही सब कुछ था। फिर वो भी बड़ा होने लगा और बड़ा हो गया और उसने कहा कि उसकी भी शादी हो गई। फिर बेटे की तस्वीर लगाई क्योंकि बेटा ही सब कुछ था। और जब बेटे की शादी हुई तो बेटा शादी होने के बाद फिर मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी उसने कहा कि मुझे नया घर बनाना है, उसने अपने नाम करवा दी और कहा कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा जीवन भर। पर पत्नी साथ में थी बेटे की और उनके साथ रहते रहते उस बुजुर्ग को अनुभव हुआ कि इन्हें मेरी आवश्यकता नहीं। और उनका जिस तरह से व्यवहार था वो खुद वृद्धाश्रम में आ गए और फिर बेटे की तस्वीर हटा दी और वो जो पुरानी भगवान की तस्वीर थी धुंधली झुर्रेदार वो फिर लगा दी। जिस जिस से प्यार किया वो चले गए, जिस जिस से प्यार किया उन्होंने धोखा दिया, जिस जिस से प्यार किया वो दूर हो गए। एक परमात्मा ही है जो तब भी था, वो बीच में भी था, वो अब भी है। और इसीलिए जब भी मुझे अकेला महसूस होता है मैं अपनी इस पर्स को खोलता हूँ और भगवान को देखता हूँ क्योंकि वही था, वही है और वही रहेगा। बाकी सब भ्रम था, एक धोखा था। आगे आगे आ जाएंगे। उसके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं। जो था, जो थे अपने, वो अपने नहीं थे, वो भ्रम था। इसीलिए जहां परमात्मा जीवन बन गया है वहां पवित्रता परिणाम होगा, परिणाम पुरुषार्थ नहीं, वही सब कुछ है क्योंकि वो स्वयं सर्व पवित्र है, संपूर्ण पवित्र है, पवित्रता का सिंधु है, सागर है, सूर्य है। जो जीवन उसमें चल रहा है, उस तरफ चल रहा है, उसकी ओर चल रहा है, उसकी छत्र छाया में चल रहा है, वह जीवन पवित्र ही होगा और प्यूरिटी रिजल्ट होगी वहां। इसलिए कितना देर के लिए, कितना समय के लिए नहीं, जीवन, संपूर्ण जीवन वही था, वही है और वही रहेगा। उसके अतिरिक्त सब धोखा, मृगतृष्णा। तो किसका फोटो है पर्स में? या अपना खुद का? मोबाइल में कौन बैठा है? रियली चेक करेंगे तो कुछ और निकलेगा। डीपी चेक। परमात्मा संग जीना ये जीवन शैली हो जाए, प्रभु प्यार में खोए रहना ये जीवन शैली हो जाए, कल की साकार मुरली बाप की याद में चकना चूर हो जाओ, ठंडे ठार हो जाओ खुशी में। तो सबसे पहली विधि प्यूरिटी की, प्यूरिटी को यदि जीवन शैली बनाना है तो बाबारियन लाइफस्टाइल, शिवेरियन लाइफस्टाइल, गॉडेरियन लाइफस्टाइल, ये पहली विधि है। दूसरी विधि आत्माभिमानी जीवन शैली। आत्माभिमान कितना दिन के लिए, कितना पल के लिए, कितना घंटे के लिए नहीं, जीवन शैली। जब हो ही आत्मा तो उसमें गिनती कैसी, फिर निरंतर 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 शरीर से डिटैच्ड होने का अभ्यास। जितना जितना आत्माभिमानी बनोगे उतना आबाद, जितना देहाभिमानी उतने बर्बाद, कल की साकार मुरली। दूसरी विधि बार बार शरीर से स्वयं को डिटैच करना, शरीर से अलग। और आत्मा की कुछ बातें इस प्राणी की यात्रा में पहले भी बताई है, 10 बातें। कौन सी? जो दिन भर याद करते रहनी है, आत्मा की पृथकता का चिंतन, आत्मा की अमरता का चिंतन, आत्मा की सूक्ष्मता का चिंतन, आत्मा की दिव्यता का चिंतन, आत्मा की और क्या थी, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की पृथकता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की अमरता, आत्मा का घर, आत्मा के पिता, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां और आत्मा की यात्रा, आत्मा के समान। कैसी यात्रा की है उसने, कहां से कहां तक। दिन भर बीच बीच में ये चिंतन करते रहना, कितनी सूक्ष्म है, कितनी अविनाशी है, दिव्य कितनी है, ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, कितनी दिव्यता उसमें भरी हुई है। आत्मा की तीव्रता, रफ्तार रॉकेट से भी तेज है, कोई भी एक पॉइंट लेकर उसकी गहराई में जाना, मुझ आत्मा में कितना कुछ भरा हुआ है, इतनी छोटी सी आत्मा, कुदरत। आत्मा अभिमानी स्थिति, आत्मा के साथ स्वरूप, उसका चिंतन, परमधाम में वो स्वरूप कैसे है, यहां उन स्वरूपों की याद कैसी है, आत्मा की शांति साइलेंस। परमधाम में आत्मा जब साइलेंट है तब क्या अनुभव, इस शरीर में बैठकर जब आत्मा साइलेंट है तब क्या अनुभव है, परमधाम का साइलेंस और स्थूल वतन का साइलेंस, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका चिंतन। आज का है ना वरदान, बाह्य मुक्ता का रस है वो। वो क्या करता है, बाधा है मंजिल में, पहुंचने नहीं देगा मंजिल तक, संपूर्णता की मंजिल में। इसके लिए इसको कैंची लगाओ, बाह्य मुक्ता को, अंतर्मुक्ता, कॉस्मिक सर्जरी, साइकिक सर्जरी, किताबें लिखी है इस पर लोगों ने, साइकिक सर्जरी पर, नो ब्लड और ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट कहीं और बैठा है, डॉक्टर कहीं और, कॉस्मिक सर्जरी, साइकिक सर्जरी कहते हैं इसको, कॉस्मिक टेलीपैथी। ऐसे कुछ लोग होते हैं संसार में गिफ्टेड, जिनके पास दिव्य चक्षु होते हैं, रोगी को देखते हैं, उसके शरीर के अंदर को देख सकते हैं, चैनलिंग। बाहर जो रोग है वो कुछ और है, उसका मूल स्रोत भीतर है। एक महिला थी जिसका राइट हैंड काम करना बंद कर दिया था, उठता ही नहीं था। सारी टेस्ट कराई, सब नॉर्मल, पर हाथ पैरालाइज्ड, एक ही हाथ जो उठता ही नहीं था। आखिरकार फिजिशियंस ने कहा साइकेट्रिस्ट से मिलो। साइकेट्रिस्ट के पास गई, लंबा सेशन हुआ काउंसलिंग। पूछा उसको क्या क्या हुआ जीवन में, उसने बताया सब कुछ। बचपन में माँ मर गई, सौतेली माँ आई जिसने बहुत सताया, और जब जब उसको देखती थी ऐसा लगता था कि उसको मारूं, माँ को, सौतेली माँ को। और इतना क्रोध उसके प्रति भर गया, पर कभी कर नहीं पाई, मार नहीं पाई उसको। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, कहीं और चली गई, और फिर कुछ समय से ये हाथ पैरालाइज्ड हो गया, पर रिपोर्ट्स में कहीं कुछ नहीं है। उस साइकेट्रिस्ट ने कहा कि वो जो तुम्हारा क्रोध था और वो जो इच्छा थी कि इस हाथ से मारू, उस क्रोध ने ही इसको पैरालाइज कर दिया है। वो क्रोध और हाथ एक हो गए, अब इसलिए ये हाथ नहीं काम करता। फिर से इमर्ज करो उसको और माफ करो, ये डायग्नोसिस है, ये है निदान रोग का। सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रिट। जो क्रोध समा गया है, धीरे धीरे लंबा समय से स्टॉक उसका भर गया है और जमा हुआ हुआ क्रोध अर्थात घृणा, अब वो घृणा बन के इस हाथ में है। और फिर उसने अभ्यास चालू किया और धीरे धीरे उसका हाथ ठीक हो गया। हमारे मन के विकार शरीर में रोग के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। रोग तो बहुत पहले से चालू हो जाते हैं। अभी अभी बीपी डायग्नोस्ड हुआ ये नहीं कहो, बहुत पहले से चालू हो चुका है। अभी अभी हार्ट अटैक हुआ नहीं, अभी अभी शुगर आया नहीं, अभी अभी कोलेस्ट्रॉल आया नहीं, अभी अभी लकवा हो गया, कल तक तो ठीक चल रहे थे, अचानक हुआ जो भी हुआ। अचानक कुछ नहीं होता है, मन की भूमिका बहुत पहले तैयार हो जाती है। इसलिए सारी बीमारियों का जड़ देह भान है, देह अभिमान है, देह अहंकार है, देह का घमंड है, और सारी बीमारियों का बीज यदि देह अभिमान है तो सारे रोगों से मुक्ति का इलाज आत्माभिमान है। चाहे बीमारी कोई भी हो, कैसी भी हो, लोगों ने संकल्पों से बीमारियों को ठीक किया, जहां डॉक्टर्स ने कह दिया कि तुम अब बचोगे नहीं, वहां पर सब कुछ छोड़कर लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया। किताबें लिखी गई है इस पर। स्वयं स्वयं की सर्जरी कर डाली, स्वयं स्वयं के चिकित्सक बन गए और ठीक कर दिया। मन में वो क्षमता है। तो दूसरी विधि है पवित्रता की, आत्माभिमानी जीवन शैली। कितना देर के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, जनवरी मास में ज्यादा थोड़ा, सुबह 2 बजे से भट्टी तक। जीवन शैली अर्थात उससे प्यार करना पड़ेगा, फॉल इन लव, तभी वो जीवन शैली बनेगी। इसलिए नहीं कि उससे ये फायदे होते वो फायदे होते, ये भी ठीक है, ये फायदे है वो फायदे है, फायदे नुकसान के लिए नहीं, उससे प्यार है इसलिए। फायदे की क्या बात, बस वही अच्छा लगता है, प्यूरिटी में सारे मन ऊंचा रहता है, हल्का रहता है। देहवान आते ही आत्मग्लानी का भाव आता है, अपराध बोध होता है, दिल खाते रहता है कल की साकार मुरली। ऐसे कोई विकर्म ना करो कि जिससे दिल खाता रहे, वो नीचे ले जाने वाला मार्ग है, ये ऊपर ले जाने वाला मार्ग है, ये अधोगति की तरफ जाने वाला, वो ऊर्ध्वगामी बनाने वाला, चेतना का आरोहण होगा उसमें, हल्कापन, निरंतर खुशी, आत्माभिमानी स्थिति में, प्यूरिटी में। इसलिए दूसरी विधि आत्माभिमानी क्या, जीवन शैली, जीवन शैली बन जाए। तीसरी विधि तपस्वी जीवन शैली, तपस्या जीवन शैली बन जाए, तपस्या अच्छा लगे, अच्छी लगे, त्याग अच्छा लगे, वैराग शब्द सुनते ही मुंह में पानी आ जाना चाहिए, आहा, संसारी गृहस्थियों के कान में जाके शब्द कहो वैराग, भाग खड़े होते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे शब्द, दे हेट ऐसी सब बातें त्याग वाली। और योगी के लिए वैराग शब्द माउथ वाटरिंग, आहा, सारे संसार से वैराग, कोई नहीं चाहिए। तपस्वी जीवन का सहज परिणाम है पवित्रता, जहां पवित्र तपस्या से प्यार है, घंटों घंटों बैठने अच्छा लगता है योग में, एक घंटा नहीं, दो घंटा नहीं, घंटों बैठना अच्छा लगता है, उठना डिस्टर्बेंस लगता है। तपस्वी जीवन, मौन, साइलेंस अगर मिल जाए, अभी सेवाएं है इसलिए बोल रहे हैं, पर यदि अचानक अकस्मात साइलेंस मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अचानक एक दिन मिल गया, अचानक तीन दिन मिल गया, पूरा मौन, कल की मुरली, अव्यक्त वाणी। जैसे वो लोगों को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे ब्राह्मणों को इस स्थिति के अनुभव के लिए फुर्सत नहीं है, साइलेंस। जैसे उन लोगों को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं अज्ञानियों को, वैसे ब्राह्मणों को ये जो साइलेंस की स्थिति है, इसका अनुभव करने की फुर्सत नहीं है। बिजी है किसमें, हम बिजी है। बाबा कहते हैं जो आखिरी की स्टेज है उसमें ईजी रहेंगे, बिजी नहीं, बहुत टाइम रहेगा उसमें। तपस्या से प्यार हो जाए, तपस्या अच्छी लगने लगे। जयपुर में गोविंद जी का मंदिर था बहुत पहले, और वहां के राजा ने वहां के पुजारियों को कहा मुझसे आके मिलो। वो पुजारी ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, योगी थे सभी। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, तुमको जरूरत हो तो तुम आ जाना, हम क्यों आए। राजा ने सोचा उद्दंडता, अवज्ञा राजा की। राजा ने परामर्श किया अपने मंत्रियों के साथ और फिर उनकी शादी अरेंज करवा दी सबकी। जितने पुजारी थे, ब्रह्मचारी थे, राजा की तरफ से सब कुछ काम हो गया। फिर राजा आप किसी को नहीं बुलाता, वो अपने आप ही आते आपके लिए प्रसाद, आपके लिए भोग, क्योंकि अभी उनके पास पत्नी है, बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, तो कुछ तो चाहिए ना राजा से। तपस्वी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। सन्यासी सिट्स ऑन द हेड्स ऑफ वेदास, वो निर्भय है, निर्भीक है, और जैसे ही नीचे झुकते व्यक्ति अपवित्रता में गुजर आता है, उसे फिर भीख मांगनी पड़ती है। राजा के लिए सौगात लेकर आते हैं, अभी राजा अब नहीं बुलाता है, वो खुद ही आते मंदिर का भोग, मंदिर का प्रसाद, क्योंकि जब देंगे राजा को तो राजा सौगात देगा। फिर पहले ये सब नहीं था। तपस्या से प्यार, गृहस्थी जीवन पसंद नहीं आता है, है अगर गृहस्थ में तो भी वहां डिटैच्ड, एकदम अनासक्त है भी और नहीं भी है, ऐसे कमल समान इतने डिटैच्ड गृहस्थ में। उसी तरह वीरभद्र थे, बहुत बड़े गुरु चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, रूप गोस्वामी उसके बेटे, उसके पुत्र, उसके भी बहुत सारे शिष्य थे। उनको नेड़ा नेड़ा कहा जाता था, उनके बाल कटे हुए, शेवन। 1200 शिष्य थे और वो 1200 के 1200 इतने तपस्वी थे कि उनको सिद्धियां प्राप्त होने लगी। वो जो कहते थे वो हो जाता था, बीमार लोग आते थे वो ठीक हो जाते थे, नदी पर बैठते थे नदी उफान पर रहती थी फिर भी वो समाधि मग्न रहते थे। वीरभद्र के वो शिष्य थे, पर वीरभद्र को ही चिंता हो गई कि अब ये मेरे से आगे जाए, मेरे ही शिष्य मेरे आगे जाएंगे। उसने एक दिन 1300 शिष्यों को बुलाया, कहा कि स्नान करो कल नदी पर और सुबह मुझे मिलना। उनमें से जो 100 थे उन्होंने भाप लिया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और वो 100 स्नान करके उधर की ओर ही भाग गए, इधर आए ही नहीं। 1200 पहुंचे, वीरभद्र ने 1200 कन्याओं को तैयार कर रखा था, नेड़ा नेड़ी, और उनकी शादी करवा दी। ये जितने 1200 थे सब योग भ्रष्ट हो गए, और जो बच गए 100 वो भग गए, वही बच गए बस। क्योंकि बंधनों में प्रवेश करते ही एक के बाद एक विकार आने लगते हैं, और सारा खेल तो वास्तव में मन का ही है। तो तीसरा, तपस्वी जीवन शैली, त्याग जीवन शैली, वैराग जीवन शैली हो जाए। मैंने वैराग किया, मैंने त्याग किया, जीवन शैली है, यही जीवन है, यही अच्छा लगता है। फॉल इन लव विथ वैराग, फॉल इन लव विथ त्याग। चौथा, ब्रदरियन लाइफस्टाइल, प्राणिक लाइफस्टाइल, प्राणिक जीवन शैली, ये चौथी जीवन शैली है। ये पूरी भट्टी 108 दिनों की इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है, प्राण, मना फ्रॉम हेवन, ची की का। और पिछले 65 डेज से थोड़े थोड़े टूल्स, संसाधन, नए नए चीजें हम देख रहे हैं जो कि अपने जीवन चर्या में लानी है, जिससे जीवन ऊर्जा से भर जाए, शक्ति से भर जाए। जैसे जैसे इस प्राणिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य सहज परिणाम रूप में प्राप्त होता है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप शरीर में प्राणा स्टैब्लिश होता है, प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश होता है। प्राणा इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड होता है अपने आप, और फिर बाहर की चीजों की आवश्यकता अपने आप कम होने लगती है। ब्रदरियन लाइफस्टाइल अर्थात प्राणिक जीवन शैली, ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, और हमारा तीसरा जन्म है। पहला शरीर का जन्म, दूसरा ब्राह्मण जन्म, और इस ब्राह्मण जन्म में भी प्राणिक जन्म तीसरा, जिसमें हम प्रकृति से जुड़ते, प्राण से जुड़ते। प्राण जो हमारे भीतर ही है, हम वो मछलियां है जो समंदर में तैर रही है, वो हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, और उसके सिवा हम जी नहीं सकते। हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्राण तो चारों तरफ है, केवल यहाँ के एंटीना जो है वो बंद है बस। इसलिए इतना कुछ शरीर में डालते रहते। जब वो प्राण फ्लो स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर धीरे 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 कम कम होते जाएगा, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चार विधियां है पवित्रता की। सबसे पहली बाबा मई जीवन, आगे भी वो, पीछे भी वो, अंदर भी वो, बाहर भी वो, ऊपर नीचे, सब तरफ वही वो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उसकी वो आवाज निरंतर कानों में पड़ती रहे, हम सुनते रहे। सुनने का अभ्यास करना है, बिकम अ चैनल। आज कहा ना, सभी रस उसमें है, उसमें सब रस है। माँ बाप टीचर गुरु सब कुछ है वो, सभी की सैकरींद, सारे रस उस एक रस में है। उस एक रस का अनुभव करना योग में, कि सारे रसों की अनुभूति हो रही है, एक एक रस। उससे मीठा और कोई आवाज नहीं है संसार में, स्वीटेस्ट साउंड इन द वर्ल्ड। एक पति और पत्नी की लड़ाई हो जाती है, और इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि दोनों बात करना बंद कर देते हैं। एक दिन दो दिन एक हफ्ता हो जाता है, बिल्कुल बात नहीं करते दोनों। अब दोनों के अंदर बेचैनी होती है, पर चालू कौन करेगा, मैं क्यों करूं, पहले उसने बात करनी चाहिए। वो कहते सोचती है उसने बात करनी चाहिए, पति कहता है मैं ही कुछ करता हूं। और एक दिन सुबह से लेकर शाम तक ढूंढना चालू करता है, जैसे दिखाता है मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। ये ड्रॉवर खोलता है, वो ड्रॉवर खोलता है, अलमारी खोलता है, ये खोलता है, बकेट वो कॉट के नीचे घुसता है, बाथरूम में ढूंढता है, पूरा किचन में ढूंढ रहा है, आवाजें कर रहा है बर्तनों की, ढूंढ रहा है कुछ। पत्नी को भी लगता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये ढूंढ रहा है, कुछ तो हुई है बात, इसलिए तो ढूंढ रहा है। कपड़े पूरा नीचे करता है, फिर ऊपर डालता है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। आखिर पत्नी से रहा नहीं जाता है, वो कहते हैं आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो। वो कहता है यूअर स्वीट वॉइस, तुम्हारी मीठी आवाज, वही तो खो गई। बाप की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है ना कि नहीं। ढूंढो आज दिन भर ढूंढो, फिर वो ही पूछेगा किसको ढूंढ रहे हो। शाम को वो पूछेगा किसको, पर खोज इतनी तीव्र हो, सच्चाई हो कि मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। As the heart panted after waters brook, my heart panted after thee, O Lord. जैसे हिरन जल को ढूंढता है, वैसे मैं तुझको ढूंढ रहा हूं। तेरी आवाज क्यों सुनाई नहीं देती, जब ज्ञान में आए थे तब तो सुनाई देती थी, अब पता नहीं कहां चली गई, सेवाओं के जंगल में कहां खो गई उसकी आवाज, सुनाई नहीं देती उसकी आवाज। वो क्या कहना चाहता है, कुछ तो उसे कहना है मुझसे, पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या करूं, सुनने का समय कहां है। तो ये चार बातें हैं। पहला, बाबा में जीवन, बाबारियन लाइफस्टाइल, गॉडारियन लाइफस्टाइल, शिवारियन लाइफस्टाइल। दूसरा, आत्माभिमानी जीवन शैली, सोल कॉन्शियस जीवन शैली। जीवन शैली कब तक ये नहीं पूछना, निरंतर सतत अहर्निश, सोते समय उठते समय जागते समय। तीसरा, तपस्वी जीवन शैली, कब तक तपस्या करनी है, जब तक 18 जनवरी पूरी नहीं हो जाती। 19 तारीख को पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि 18 जनवरी भी हो जाती है। अरे उस तरह का नहीं, ऐसा सोचते हैं, जैसे भक्ति में श्रावण मास वैसा। क्या चार से तपस्या, सुबह 4 से 8, 6 से 10, बहुत तपस्या कर ली, अभी थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना, अर्थात तपस्या श्रम था, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए ना। सब हो गया, बस सुबह सुबह शांति स्तंभ, 18 जनवरी, शॉल, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आंखों से आंसू, आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, अत्यंत प्रेम की तरंगे भीतर। गीत पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई, भोग पूरा हुआ, दिन पूरा हुआ, और फिर छुट्टी। जीवन शैली। और चौथा, प्राणिक जीवन शैली, ब्रदारियन लाइफस्टाइल, BLS, ये थी पवित्रता की चार बातें। फिर है ब्रह्मचर्य की चार बातें। पहला, अमृत वेला। यदि ब्रह्मचर्य को दृढ़ करना है तो सारा काम अमृत वेले पर करो। ये जो प्रश्न उत्तर आ रहे उसमें एक प्रश्न ऐसा आया कि भाई जी, जब से अमृत वेला करने चालू किया है तब से तबीयत खराब रहने लगी है। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बंद करो अमृत वेला, और अमृत वेला बंद कर दिया। अब से अभी तबीयत सुधर गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अमृत वेला करना चाहिए तो मैं किसको प्राधान्यता दूं, अपने स्वास्थ्य को या अमृत वेले को? कृपया समाधान करें। ये ऐसे प्रश्न है क्योंकि डॉक्टर ने भी स्टैंप लगा दिया, ये तुम जो अमृत वेला करते हो ना, इसी से तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है और फिर दिन भर में स्ट्रेस रहता है, उससे डिप्रेशन में जाते हो और बीमारियां शरीर में आती है। बंद करो ये सब। तो अभी अमृत वेला बंद है तो सब ठीक ठाक चल रहा है। तो आप बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये है प्रश्न।
क्या बताइए सर?
वही तो। ऐसे ही प्रश्न है सारे, बहुत सारे। अभी चालू होगा 20 तारीख से, 19 तारीख से 238 प्रश्न हो गए अभी तक, और भी बहुत सारे अलग से आए हुए। मेन जो आए वो उधर है। तो सबसे पहला है, ब्रह्मचर्य के लिए क्या जरूरी है? अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेला ही वो समय है जब हम आत्मा अभिमानी बन सकते हैं, बाबा मई बन सकते हैं, तपस्वी जीवन हो सकता है। अमृत वेले के समय प्राण ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है। प्राणिक फील्ड सारे दिन में प्रदूषण होता है वायुमंडल में, अमृत वेला प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा बहती है वातावरण में। उस प्राण ऊर्जा को भीतर में भर लेना है। इसलिए सुबह सुबह उठ के कोई को भूख लगती है क्या? नहीं, पेट खाली है पर भूख नहीं लगती है। पेट का खालीपन और भूख अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है, इसको हम देखेंगे प्रश्न उत्तरों में। तो सबसे पहला अमृत वेला, दूसरा अवॉइड। 8 बातें देखेंगे, चलो 4 नहीं, अवॉइड ट्रिगर्स। जिनको ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना है वो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? ट्रिगर अर्थात उत्तेजक उकसाने वाली चीजें। वो ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं? पहला, मूवी, चित्र, पोस्टर, कपड़े, कुछ भी हो सकता है ट्रिगर, वस्तु, गिफ्ट, सेंट, कुछ भी, कोई टच, कोई संगीत, कोई वीडियो, कोई स्की सीन, कोई ऑडियो, कोई स्थान, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। इनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है, वो जैसे ही सामने आती है काम वासना उठती है, जागृत होती है। कोई व्यक्ति, किसी का चित्र, पोस्टर, पिक्चर, मूवी, क्लिप, ट्रेलर, ट्रेटर, कुछ भी इस तरह का, वो जितने ट्रिगर्स है सबसे पहले उन पर काम करना है, उनको हटाते जाना है। और ट्रिगर्स को हटा देना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। कोई कहे कि मुझे गुलाब जामुन खाना ही नहीं है और डिब्बा ला के रख दिया अपने सामने, और फिर कहते हैं मुझे इसको खाना नहीं है, ये नहीं होता है। उसको वहां से हटाओ तो पुरुषार्थ होगा। जो ट्रिगर्स है उनको पूरा हटा दो, जो व्यक्ति ट्रिगर है उसकी सारी यादें मिटा दो। व्यक्ति को नहीं हटा सकते, उसकी यादें। कोई गिफ्ट ट्रिगर है। वास्तव में व्यक्ति को काम वासना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो ट्रिगर्स है। उसको क्यों चाहिए? उसके कुछ कारण है। एक कारण है टायर्डनेस, रिलैक्सेशन। वासना की तरफ क्यों आकर्षित होता है? रिलैक्सेशन के लिए, चेंज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इसलिए नहीं कि उसको उस लस्ट्स या उस व्यक्ति से ये सब चीजें हैं, या फिर उसे कोई चीज से भागना है। कोई जीवन में दुख आ गया है, उस दुख की अवस्था में काम वासना ट्रिगर होती है। या सूडो हैप्पीनेस, एक झूठा सुख, या उसे लगता है कोई मुझे प्यार करे, या आत्माभिमानी स्थिति की कमी, या अंदर में कमी खालीपन है जो फुलफिल करना है, या बिलोंगिंगनेस कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपना कहे, वो मेन इच्छा है वास्तव में। ऊपर उसकी अभिव्यक्ति वो सब चीजों से हो रही है, पर अंदर ये सब है डीप विद इन। उसे किसी चीज से भागना है, कोई फुलफिलमेंट चाहिए। इतने समय हो गया ज्ञान में चलते चलते, खालीपन है, वो कैसे भरे खालीपन। और फिर काम से दोस्ती होती है, ये कारण है ट्रिगर के। ट्रिगर और उनके कारण क्या है, ये दोनों पर काम करना है। अवॉइड ट्रिगर से, ये है ब्रह्मचर्य पालन करने की विधि। तीसरा, बिजी कर दो खुद को। जो लोग बिजी रहते हैं उनको काम वासना सताती नहीं है। जो लोग खाली बैठे हैं, दो घंटा खाली है तो मोबाइल है, यूट्यूब है, भटक जाते, काम ही नहीं है, कुछ कुछ भी देख रहे हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है। डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। ऑनलाइन तब तक नहीं जाना है जबकि लक्ष्य ना हो। कोई लक्ष्य है, मुरली में पॉइंट आया, उसका अर्थ नहीं ढूंढ रहा है, उस शब्द मिल रहा है, इंटरनेट पे गूगल करो, सर्च करो, बस उतना मिल गया कि वापस आ जाओ, सेफ, प्ले सेफ। वहीं इधर उधर ढूंढते नहीं बैठना है और कुछ। और बिजी करो, कितनी सारी चीजें। भारत में जस्टिस रानड़े थे, गोविंद महादेव रानड़े, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में थे। उनको एक आदत थी नई नई भाषाएं सीखने की, तो उन्होंने, वहां एक नाई था वो बंगाली भाषा जानता था, उससे दोस्ती कर ली और उसके पास बार बार जाते रहते थे। उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, वो भी कोई कम महान नहीं थी, उसने भी बड़े बड़े काम किए। रादर फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जो है उसने ही खोला था भारत का, वो पूना में। तो उसने कहा, आप इतने बड़े पद पर हो, जस्टिस हो, चीफ जस्टिस हो कोर्ट के, आप एक हजामत करने वाले के पास जाते हो भाषा सीखने के लिए। आपको किसी विद्वान को रखो, उसको पेमेंट दो, वो सिखाएगा। वो कहता है मुझे ज्ञान से लेना देना है, जाति पाति का पिटारा उसमें नहीं है, खोलेगा नहीं। सीखना है तो मैं किसी से भी सीखूंगा, नई नई भाषाएं सीखनी, वो चाहे फिर नाई से भी क्यों ना हो, उससे मैं सीख लूंगा। तो अपने आप को बिजी कर देना है, दिन भर में नई नई चीजें सीखो। जो अब तक बचपन से था कि मुझे सीखना है, सीखो। लर्न स्केटिंग, लर्न माउंटेनियरिंग, लर्न राइटिंग, लर्न ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, स्विमिंग, कुछ भी, पर बिजी रखो अपने आप को। वो विधि है ब्रह्मचर्य की। उसके बाद में व्रत ले लो ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का व्रत लेना है। व्रत लेने के बाद, प्रतिज्ञा करने के बाद उसे तोड़नी नहीं है, नीचे ऊपर कितना भी हो जाए। व्रत लिया है और उसका वर्णन करते रहो, दूसरों को सुनाते रहो, बताते रहो, हमारा व्रत है। उसके बाद में अगला, कंपनी। हम किस संघ में रहते हैं, किन दोस्तों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, उस आधार पर ब्रह्मचर्य डिसाइड होगा। अब दोस्ती ऐसे है कि जिनका सारा इंटरेस्ट खाने पीने में और ये सब चीजों में है, तो कहां से ब्रह्मचर्य फलित होगा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद है डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अत्यंत तीखा, अत्यंत मसाले युक्त, पका हुआ, जला हुआ, ये सारा जो भोजन है, रेड चिली, बहुत नमकीन, बहुत मीठा, जिनको ये सब चीजें बहुत पसंद है, वहां ब्रह्मचर्य बहुत मुश्किल है। योगी का आहार कैसा हो, और ये सारा खेल टेस्ट का है। इसको 10 दिन तक बिना नमक का खिलाओ, 11वें दिन उसको बिना नमक का ही अच्छा लगता है। सॉल्ट, चिली, शुगर, ये सारी चीजें जो है बहुत तीखा, ये राजसिक आहार है सर। जितना राजसिक आहार होगा उतनी उत्तेजनाएं होगी, जितना आहार सात्विक होगा मन शांत रहेगा। खुद ही प्रयोग करके देख सकते हैं, 3 दिन ट्राई, रॉ वीगन डाइट, कच्चा 3 दिन खा के देखो, या 1 दिन जूस पर रहो पूरा दिन, शाम तक देखो ब्रह्मचर्य की क्या अवस्था रहती है। शरीर से स्वतः डिटैचमेंट रहता है, शरीर में होते हुए मैं शरीर में हुई नहीं, लिक्विडिटी शरीर में फ्लो होती है, सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ, अल्टीमेट पुरुषार्थ है लिक्विड्स की तरफ आना। ये जो चबाना है ढेर सारे प्रश्न है वो हम देखेंगे, फिर हमको दांत ही क्यों है, पेट ही क्यों है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है उसके उत्तर हम देखेंगे, बहुत गहरे गहरे उत्तर है, उत्तर भी गहरे और प्रश्न भी गहरे है। जब तक सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ नहीं आते, ब्रह्मचर्य की वास्तविक यात्रा चालू नहीं होती। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड लाइफस्टाइल है अभी, वैसे लिक्विड लाइफस्टाइल हो जाए। अबेंडेंस सॉलिड का है, लिक्विड का अबेंडेंस हो जाए। जैसे सॉलिड की रेसिपीज बनाते हैं वैसे लिक्विड की रेसिपीज बनाओ। धीरे धीरे शरीर में ये जो सेल्स है हमारे, उसमें जो जड़ता है वो सॉलिड की वजह से धीरे धीरे उसमें फ्लूडिटी आने लगती है। लिक्विड से लिक्विड्स, लिक्विड से लिक्विड, पूरा लिक्विड बॉडी, वी आर लिक्विड बींग्स, हमें सॉलिड की आवश्यकता ही नहीं। सॉलिड तो इवोल्यूशनरी चेंज है जो धीरे 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 हो गया है और उससे जड़ता आ गई है। ये यात्रा बहुत सूक्ष्म है जो हम आगे देखेंगे प्रश्न उत्तरों में कैसे करनी है। धीरे धीरे लिक्विड्स की तरफ आना है, ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा, डाइट। उसके बाद में है ड्रिल। ड्रिल अर्थात दो बात है इसमें, कुमारों के लिए हार्ड वर्क, ब्रह्मचर्य अगर रहना है तो डू हार्ड वर्क, दिन रात बिजी करो, जिसमें परिश्रम हो ऐसा काम करो, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, हार्ड वर्क। और ड्रिल अर्थात रूहानी ड्रिल, रूहानी ड्रिल अर्थात आत्मा शरीर में अंदर बाहर, जो बाबा इतनी ड्रिल कराते हैं वो सारी ड्रिल करते रहनी है, करते रहनी है। तो स्वतः ही ये जो ब्रह्मचर्य है वो परिणाम के रूप में हमारे सामने आएगा। अभी परिणाम नहीं है, अभी बहुत पुरुषार्थ है और उसमें भी बहुत अप एंड डाउन होते रहता है। कितने लोगों के जो भी प्रश्न आते हैं, कहते अकेले में बात करनी है, तब समझ जाते टॉपिक क्या होगा। कोई कहते अकेले में बात करनी है, ऐसे नहीं बात करेंगे, अकेले में टाइम चाहिए, आप टाइम दो उसके बाद ही बात करेंगे। या फिर चिट्ठी, ऐसी चार पेज वाली चिट्ठी, इसको पढ़ लेना अकेले में, और हमारा नंबर लिखा है प्लीज फोन कर देना। हमारे ओपीडी में इतनी लेटर्स अभी पड़े हुए, वैसे ही पड़े हुए, इतने लंबे लंबे दस दस पेज के लेटर, बारीक बारीक हैंडराइटिंग भाग के आते हैं कुमार, ये लेटर थमा के भाग जाते हैं, वो कहते उस पे लिखा है, अरे क्या उसमें फोन नंबर भी लिखा है। लास्ट आठवां सी, और एक सी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंट्रोल करना। उसमें कई बार चर्चा हो चुकी है ब्रह्मचर्य में क्या क्या नहीं होना चाहिए, जैसे स्पर्श करना, देखना, प्रशंसा करना, खेलना साथ साथ, आठ बातें। ये आठों में से कोई भी एक बात का खंडन अगर होता है, एक कोई भी एक बात होती है किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी जगह, तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। पहला, स्पर्श करना किसी स्त्री को, स्त्री का पुरुष को, पुरुष को पुरुष का स्त्री को, ब्रह्मचर्य का खंडन, स्पर्श। दूसरा, दर्शना, देखना कामुक दृष्टि से स्त्री का पुरुष को, पुरुष का स्त्री को, ब्रह्मचर्य का खंडन है। देखना, स्पर्श करना, प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, ये भाई बहुत ही अच्छा है, ये बाबा ये बहन बहुत अच्छी मीठी मुरली सुनाती है, बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसकी वाणी बहुत अच्छी है, इसकी मुरली अच्छी है। अरे बच्चे, मीठी बहन नहीं, मीठी मुरली है, साकार महावाक्य। तो ये चार बातें, खेलना साथ साथ खेलना, बॉयज गर्ल्स। पांचवा, गुह्य भाष्य, एकांत में प्राइवेट टॉक, कोई अंधेरे में इधर घुसा है, कोई उधर घुसा है, मोबाइल पे बातें चल रही है एक एक घंटा, वीडियो कॉल्स, गुह्य भाष्य। अध्यावसाय, संकल्प करना समीप जाने का, नहीं पहला है संकल्प, संकल्प और फिर अध्यावसाय, वास्तव में समीप जाना, और अंतिम क्रिया। ये आठों चीजों में से कोई भी एक बात किसी भी समय, किसी भी स्थान और किसी भी परिस्थिति में होती है तो ब्रह्मचर्य का खंडन है। कौन सी आठ बातें? पहला, देखना, दूसरा, स्पर्श करना, तीसरा, प्रशंसा करना, चौथा, खास साथ साथ खेलना, केली कहते हैं उसको ब्रह्मचर्य इस भाषा में, वेदों की भाषा में। पांचवा, संकल्प करना, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट चैट, प्राइवेट चॉट, एनक्रिप्टेड प्राइवेट चॉट। उसके बाद में संकल्प करना समीप जाने का, प्लानिंग करना, हम दोनों वहां मिलेंगे, तुम वहां आना मैं वहां आऊंगा। उसके बाद समीप वास्तव में जाना, और अंतिम द क्रिया, द सेक्सुअल एक्ट, वो लास्ट है, काम कटारी। उसके पहले ये सात बातें, ये साथ में भी कोई एक हो गया तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। तो ऐसी ये टोटल कितनी बातें हो गई, आठ बातें ब्रह्मचर्य की और चार बातें प्यूरिटी की। और प्यूरिटी में प्रार्थना भी करो तो अच्छा है, क्योंकि सब करने के बाद नहीं हो रहा है ना, तो प्रार्थना ही करो, प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखू, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊँ, जय मैं पाऊँ, ताकि तेरे जैसा दिखू। एक क्रिश्चियन पादरी ने यह गीत लिखा है, वो लिखता है मैं एकांत में चला गया और भीतर से आवाज़ उठी प्रभु के लिए, तब मैंने ये गीत लिखा। एक क्रिश्चियन पादरी, एक क्रिश्चियन सॉन्ग है, क्रिश्चियन में बाइबल में लिखा है तुम्हारा दुश्मन कौन है, ये शरीर और दूसरा शैतान। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊँ, तेरे वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, प्रार्थना के बल से बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। ओम शांति। कल की क्लास 5 से 6 बजे तक रहेगी।
पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
पवित्र आत्मा में।